नमस्कार भारत, तारीख 16 नवंबर, दिन शुक्रवार, मैं हूं मानसी दाश। ब्रेक्सिट को लेकर ब्रिटेन में राजनीतिक माहौल गर्म, टेरिजा मे ने कहा अंजाम तक पहुंचेगा समझौता।
ऑपोजिशन में से सपोर्ट तो मिला ही नहीं, लेकिन उनकी खुद की पार्टी के लोग उनके डील के अगेंस्ट है। ब्रिटेन की जो पब्लिक है वो भी उनसे नाखुश है।
सऊदी अरब ने कहा क्राउन प्रिंस को नहीं थी जमाल खाशोजी की हत्या की खबर। तुर्की ने कहा बेबुनियाद है दलील।
बाज़ अचिप्लामालारे तात्मिन एदिजी बुलमादığımı da şahsen söylemek।
और मध्य प्रदेश में भाजपा को कड़ी चुनौती दे सकती है कांग्रेस।
परिस्थिति बहुत, एक तरह से ये कहना चाहिए कि बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कमलेश मठेनी से। कैबिनेट से मंजूर हुए ब्रेक्सिट मसौदे के विरोध में प्रधानमंत्री टेरिजा मे से इस्तीफे की मांग की जा रही है। कैबिनेट की बैठक के बाद उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बातें भी कही गईं, लेकिन टेरिजा मे ने अपने इस्तीफे से जुड़ी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमानों को वापस म्यांमार भेजने की योजना पर रोक लगाने के बाद म्यांमार अधिकारियों ने अपने बांग्लादेशी समकक्षों की आलोचना की है। म्यांमार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बांग्लादेश को ज़रूरी इंतजाम ना कर पाने के लिए जिम्मेदार ठहराया, लेकिन बांग्लादेश की सरकार का कहना है कि उन्हें कोई भी ऐसा रोहिंग्या शरणार्थी नहीं मिला जो म्यांमार लौटने के लिए तैयार हो, और वो किसी को भी ज़बरदस्ती वापस नहीं भेजेंगे। वहीं म्यांमार वापस भेजे जाने को लेकर रोहिंग्या शरणार्थियों ने कॉक्स बाजार में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध कर रही एक शरणार्थी रहेला बेगम ने कहा, हम नहीं जाएंगे जब तक कि वो हमें रोहिंग्या समुदाय के तौर पर स्वीकार नहीं कर लेते। उन्हें हमारी जमीन और घर लौटाने होंगे, हम शिविरों में नहीं रहेंगे। अगर जबरदस्ती भेजा जाता है तो मैं अपने बच्चों समेत जान दे दूंगी। ये थे एक रोहिंग्या शरणार्थी के शब्द। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि पूर्वी कांगो में बेनी शहर के पास हुई एक मुठभेड़ में उसके 7 शांति सैनिकों की जान चली गई। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने बताया कि 6 शांति सैनिक मालावी और एक तंजानिया से थे। हालांकि हमला करने वाले विरोधी गुट का पता नहीं चल पाया है। इस इलाके में युगांडा एलाई डेमोक्रेटिक फोर्सेज सहित कई गुट सक्रिय हैं। इस हमले के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टेफान यूजरिक ने कहा, एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस के खिलाफ शांति सैनिकों और कांगो के सैन्य बल के संयुक्त अभियान में शांति सैनिकों की मौत हो गई। प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चला है कि 10 शांति सैनिक घायल हैं और एक लापता है। कांगो सैन्य बल के भी कई सैनिक मारे गए हैं और घायल हैं। ये थे संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टेफान यूजरिक के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मध्य अमरीकी देशों के लोगों का काफिला मैक्सिको अमरीका की सीमा पर स्थित शहर तिजुआना पहुंच गया है। ये लोग सीमा पर अमरीका जाना चाहते हैं। मैक्सिको प्रशासन का कहना है कि 4,000 से ज़्यादा प्रवासी इस वक्त शहर में हैं। गरीबी और भुखमरी से परेशान होकर ये लोग पिछले महीने अपना देश छोड़कर आए हैं। वहीं प्रवासियों को रोकने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हज़ारों सैनिक सीमा पर भेज दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि प्रवासियों का ये काफिला अवैध है और देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। अमरीका ने सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खाशोजी की हत्या में शामिल होने के आरोप में सऊदी अरब के 7 लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला तब लिया गया जब सऊदी अरब के सरकारी अभियोजक ने खाशोजी मामले में 5 अभियुक्तों के लिए सजाए मौत की मांग की। हालांकि सरकारी अभियोजक उन लोगों में शामिल नहीं है जिन पर अमरीका ने प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हत्या के दोषियों को जिम्मेदार ठहराने की बात कही, साथ ही अमरीका और सऊदी अरब के रणनीतिक संबंधों के महत्व पर भी जोर दिया। मोरक्को में अफ्रीका की सबसे तेज चलने वाली रेल सेवा का उद्घाटन किया गया जो 2 शहरों के बीच की दूरी को आधे से भी कम कर देगी। फ्रांस की रेल कंपनी SNCF इस परियोजना में शामिल है। रेल सेवा के उद्घाटन के मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी मौजूद थे। इस मौके पर मोरक्को के प्रधानमंत्री साद एडिन अल उथमाने ने कहा कि इस परियोजना से मोरक्को को तेज रफ्तार वाली रेलों की तकनीक विकसित करने में मदद मिलेगी। अमरीका में मध्य अवधि चुनाव के 1 सप्ताह से ज्यादा समय बीत जाने के बाद फ्लोरिडा में वोटों की मैनुअल गिनती के आदेश दिए गए हैं। मतों की इलेक्ट्रॉनिक गिनती में रिपब्लिकन उम्मीदवार रिक स्कॉट की जीत का अंतर 0.25% से भी कम था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। बुलेटिन की शुरुआत ब्रिटेन से, जहां ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर जाने यानी ब्रेक्सिट को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कल कैबिनेट की बैठक में ब्रेक्सिट के मसौदे को मंजूरी मिल गई थी, जिसके बाद कई मंत्रियों ने विरोध जताते हुए अपने पद से इस्तीफे दे दिए हैं। साथ ही देश में प्रधानमंत्री टेरेसा मे के इस्तीफे की मांग भी तूल पकड़ने लगी है। कल एक प्रेसवार्ता में टेरेसा मे ने ब्रेक्सिट और अपने इस्तीफे की मांग को लेकर चल रही अटकलों के से जुड़े सवालों के उत्तर दिए और इन अटकलों को खारिज किया। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए कमलेश मठेनी से।
ब्रेक्सिट पर प्रस्तावित मसौदे को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद मसौदे के विरोध में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे से इस्तीफे की मांग की जा रही है। कैबिनेट की बैठक के बाद कई मंत्रियों ने इस्तीफे भी दिए और टेरेसा मे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात भी सुनने को मिली, लेकिन टेरेसा मे ने ब्रेक्सिट के मुद्दे पर इस्तीफा देने से जुड़ी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि वह मानती हैं कि इस समझौते से ब्रिटेन को लाभ होगा, वह इसे अंतिम पड़ाव तक पहुँचता हुआ जरूर देखेंगी। गुरुवार को संसद में नेताओं के सवालों के जवाब देने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा,
is about making the right decisions, not taking the easy decisions.
नेतृत्व मुश्किल फैसले लेने में होता है, न कि आसान रास्ता चुनने में। मेरा काम है कि मैं उस डील पर आगे बढ़ूं जिसके लिए ब्रिटेन के लोगों ने अपना वोट दिया था। मुझे लगता है कि जनता भी सरकार से यही चाहती है। ये थे ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे के शब्द। इधर यूरोपीय संघ में शामिल नेताओं ने ब्रेक्जिट के मसौदे पर फिर से ब्रिटेन के साथ चर्चा करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यूके के राजनीतिक हालात को देखते हुए हो सकता है कि ये डील न हो। इस पर जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा,
Wir haben doch jetzt ein Dokument auf dem Tisch, dem haben Großbritannien und die Europäische Union.
क्योंकि अब मसौदा मेज पर रखा जा चुका है, इसलिए इस वक्त फिर से बातचीत शुरू करने की कोई गुंजाइश नहीं है। दोनों पक्ष ये मान चुके हैं कि यूरोपीय संघ से बाहर जाने की यही संभावना है। ये थे जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के शब्द। ब्रेक्सिट के मुद्दे पर ब्रिटेन के प्रस्तावित मसौदे पर चर्चा के लिए यूरोपीय संघ ने कई बैठकें करने का फैसला लिया है, ताकि 25 नवंबर तक इस पर किसी फैसले पर पहुंचा जा सके। वहीं IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि एक अव्यवस्थित समझौता ब्रिटेन के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। उन्होंने समझौते को लागू करने के लिए पर्याप्त समय देने की बात की। IMF के प्रवक्ता गैरी राइस ने कहा, स्थितियाँ आगे बढ़ रही हैं। हर किसी की तरह हम भी यही देखना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। हम दोनों पक्षों को सही समय पर एक समझौते पर पहुंचने की सलाह देते हैं, जिसमें उसे लागू करने का समय भी मिल सके, ताकि कंपनियों और श्रमिकों को नई व्यवस्था और संबंधों में ढलने का पर्याप्त समय मिले। ये थे IMF के प्रवक्ता गैरी राइस। वहीं ब्रेक्सिट के समर्थक माने जाने वाले जैकब रीस-मॉग ने टेरेसा मे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के संबंध में 1922 की टोरी बैक वेंचर कमेटी के अध्यक्ष सर ग्राहम ब्रेडी को एक खत लिखा है। अगर 48 या उससे अधिक टोरी मंत्रियों ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए लिखित सहमति जताई तो प्रस्ताव लाने का रास्ता साफ हो जाएगा। बताया जा रहा है कि फिलहाल सर ग्राहम ब्रेडी को 48 गुजारिशें नहीं मिली हैं।
रिपोर्ट सुना रही थी कमलेश मठेनी। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये शायद पहली बार है जब विपक्ष समेत उनकी अपनी पार्टी के कई नेता टेरेसा मे के खिलाफ हैं, और साथ ही कुछ हलकों में उनके इस्तीफे की बात भी उठ रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर कल टेरेसा मे ने एक प्रेसवार्ता की और संवाददाताओं के सवालों के उत्तर दिए। अब से कुछ देर पहले मैंने बात की लंदन में मौजूद एशिया नेटवर्क की संवाददाता गगन सभरवाल से और जाना कि अब प्रधानमंत्री टेरेसा मे के सामने क्या चुनौतियां हैं।
कल टेरेसा मे ने अपने पॉलिटिकल करियर का सबसे मुश्किल दिन देखा, क्योंकि उनको चारों साइड से बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया उनके ब्रेक्सिट विड्रॉवल एग्रीमेंट प्लान्स के ऊपर, और इसकी वजह से उनके एडमिनिस्ट्रेशन टीम में से 7 मेंबर्स ने भी स्टेप डाउन किया। उनमें से 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स भी थे, और कल शाम को जब वो हाउस ऑफ कॉमन्स से निकली, मिनिस्टर्स के क्वेश्चन का जवाब दिया, फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया, और उन्होंने कल बोला कि वो बिलीव करती है कि उनका जो डील है ना, वो नेशनल इंटरेस्ट का डील है। उन्होंने ये भी स्ट्रांगली बोला है कि वो बिलीव करती है कि ये डील कंट्री और कंट्री के लोगों के लिए राइट है. उन्होंने ये भी बोला कि वो सॉरी है कि कुछ लोगों ने डिसाइड किया गवर्नमेंट छोड़ना.
जी, इस बीच जिस तरह की आलोचना आ रही थी, कई लोगों का ये भी कहना था कि टेरेसा मे पर इस्तीफा देने का दबाव बन सकता है.
किसी जर्नलिस्ट ने उनको कल शाम को पूछा था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर वो इशू हुआ, क्या आप उसके अगेंस्ट फाइट करेंगी? तो उन्होंने बोला कि मेरा जॉब ये है कि मैं वो डील लेके आऊं जो ब्रिटिश की पब्लिक चाहती है. एंड उन्होंने बोला कि अगर आप मुझे ये पूछ रहे हैं कि एम आई गोइंग टू सी दिस डील राइट थ्रू टिल द एंड, ऑफ कोर्स, बेसिकली सेइंग विल नॉट क्विट.
कह सकते हैं कि टेरेसा मे ने ये कहा कि ब्रेक्सिट के पूरे समझौते को वो आखिरी मुकाम तक पहुंचा के ही दम लेंगी.
उन्होंने वैसा ही कहा है.
जी, अब मुझे ये बताइए कि अभी फिलहाल जब कैबिनेट ने प्रस्ताव के मसौदे को मंजूरी दे दी है, अब वहाँ जनता की क्या राय है, किस तरह की प्रतिक्रिया है?
टेरेसा मे के लिए कल का दिन बहुत ही हार्ड था उनके पॉलिटिकल करियर के लिए, क्योंकि ऑपोजिशन में से सपोर्ट तो मिला ही नहीं, लेकिन उनकी खुद की पार्टी के लोग उनकी डील के अगेंस्ट थे. एड टू ऑल दैट, ब्रिटेन की जो पब्लिक है वो भी उनसे नाखुश है. मैं कुछ घंटों से सोशल मीडिया देख रही थी और कुछ हैशटैग जैसे टेरेसा मे रिजाइन, टेरेसा मे मस्ट गो, ब्रेक्सिट केओस, ऐसे ऐसे हैशटैग आ रहे. जो भी कॉन्फिडेंस था प्राइम मिनिस्टर के ऊपर वो तो और भी कम होता जा रहा है, दिखाई दे रहा है. लोगों ने सोचा कि शायद वो आज क्विट करेगी. नहीं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की ना, उनका जो टोन था, इट वॉज जस्ट अ टोन ऑफ अ फाइटर. उन्होंने बोला कि ये डील ब्रिटेन के लिए सही है और मैं ये पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ये डील स्टार्ट टू फिनिश तक देखूं.
टेरेसा मे के लिए ये मुश्किल का दौर, बता रही थी गगन सबरवाल. और अब एक खबर सऊदी अरब से. सऊदी अरब के सरकारी अभियोजक ने कहा है कि लापता पत्रकार जमाल खाशोजी की हत्या एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी के आदेश पर हुई थी और इसमें क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का हाथ नहीं था. रियाद में आयोजित प्रेस वार्ता में डिप्टी सरकारी अभियोजक शालान बिन राजी शालान ने कहा कि अधिकारी को खाशोजी से बात कर उन्हें अपने देश लौटने के लिए राजी कराने की जिम्मेदारी दी गई थी. 2 अक्टूबर को जब खाशोजी तुर्की स्थित सऊदी दूतावास में पहुंचे थे, वहां कुछ लोगों के साथ उनकी हाथापाई हुई, जिसके बाद उन्हें जानलेवा इंजेक्शन लगा दिया गया था. हत्या के बाद खाशोजी के शरीर को अलग अलग हिस्सों में करके बिल्डिंग से बाहर लाया गया. सरकारी अभियोजक ने यह भी कहा कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को खाशोजी की हत्या के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. हालांकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद के आलोचक ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि प्रिंस को इस मामले की कोई जानकारी नहीं रही होगी. तुर्की ने सऊदी अरब की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया है. सऊदी अरब के सरकारी अभियोजक के प्रेस वार्ता के बाद तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत चोवाशुग्लू ने कहा कि ये दलील संतोषजनक नहीं है.
Bazı açıklamaları tatmin edici bulmadığımı da şahsen söylemek isterim.
निजी तौर पे मुझे ये लगता है कि उन्होंने जो कहा वो संतोषजनक नहीं है. उनका कहना है कि खाशोजी के साथ हाथापाई हुई, जिसके बाद उनकी हत्या की गई, लेकिन ये पहले से ही सोच समझ कर की गई हत्या थी. चोवाशुग्लू का कहना है कि इस मामले में आदेश देने वाले और उसे उकसाने वाले का नाम सामने लाया जाना चाहिए और तथ्यों को छुपाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए. सऊदी अरब के सरकारी अभियोजक के अनुसार इस मामले में 11 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है और 5 के लिए मौत की सजा मांगी गई है. इधर खाशोजी की हत्या में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में अमेरिका ने सऊदी अरब के 17 नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं. इस मामले में अब तक कुल 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि 2 उच्च अधिकारियों को उनके पद से हटाया गया है. कार्यक्रम में अब रुख करते हैं भारत का. अयोध्या में 24 और 25 नवंबर को शिवसेना के कार्यक्रम और विश्व हिंदू परिषद की धर्म सभा को देखते हुए वहां के मुसलमानों में खौफ है और वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. हालांकि राज्य सरकार और पुलिस प्रमुख ने किसी को भी दहशत में न रहने और पूरी सुरक्षा देने की बात कही है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि उनके पुराने अनुभव ऐसे हैं जो उन्हें डरा रहे हैं. पूरे मामले पर सुनिए हमारे सहयोगी समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट.
अयोध्या में पिछले कुछ दिनों से बढ़ती राजनीतिक सरगर्मी और आने वाले दिनों में वहां होने वाले लोगों के संभावित जमावड़े से वैसे तो अयोध्या का आम आदमी भी कहीं न कहीं त्रस्त दिखता है. लेकिन इसकी वजह से वहां का मुस्लिम समुदाय खौफ में है। विवादित परिसर से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर रहने वाले और बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार इकबाल अंसारी ने तो पर्याप्त सुरक्षा न मिलने पर अयोध्या से बाहर चले जाने की धमकी दी है।
कोई घटना घटती है इसके लिए कोई इंतजाम नहीं कि अभी से जो है किया जा रहा है, केवल अफवाह फैलाई जा रही है और लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। कोई कह रहा है 25,000 आवेंगे तो कोई कह रहा है 1,00,000 आवेंगे। अयोध्या में ऐसी स्थिति को देखते हुए हम सरकार से मांग करते हैं कि अयोध्या की सुरक्षा भी बढ़ाई जाए, अयोध्या के मुसलमानों की सुरक्षा बढ़ाई जाए, इसका इंतजाम कोई सरकार करे, वरना हम जो है 25 तारीख से पहले पहले अयोध्या छोड़ देंगे।
वहीं अयोध्या के दूसरे मुसलमानों में भी बड़ी संख्या में लोगों के जमावड़े की वजह से डर साफ दिख रहा है। आगामी 24 और 25 नवंबर को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने तमाम साथियों के साथ राम मंदिर के लिए समर्थन जुटाने के मकसद से अयोध्या पहुंच रहे हैं। उनका यह कार्यक्रम करीब महीने भर पहले से ही तय है और पिछले दिनों शिवसेना सांसद संजय राउत इस कार्यक्रम की तैयारियों के सिलसिले में 2 दिन अयोध्या भी आए थे। वहीं इस कार्यक्रम के बाद लगभग इसी मकसद से विश्व हिंदू परिषद ने भी 25 नवंबर को अयोध्या में धर्म सभा की घोषणा कर दी है। वीएचपी का कहना है कि इस धर्म सभा में कम से कम 1,00,000 लोग अयोध्या पहुंचेंगे। इससे पहले पिछले महीने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया भी अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर चुके हैं। इकबाल अंसारी कहते हैं कि कुछ वैसा ही माहौल बनाया जा रहा है जैसा 1992 में बना था और फिर बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था।
भीड़ वो किसी की सुनती नहीं है। इससे पहले 92 घटना को आपको दोहरा रहे हैं कि जब 92 में भीड़ बढ़ी तो मुसलमानों के मकान जलाए गए, लूटे गए, फूके गए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हिंदू मुसलमान भी सुरक्षित में नहीं है। जब बाहर के लोग आते हैं तो कौन क्या कर बैठे किसी कुछ का पता नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि ये 92 की ऐसी घटना जो है घटना फिर दोहराई जाएगी। इस तरीके से बात लोगों के सामने में आती है, लोग दहशत में है।
इकबाल अंसारी कहते हैं कि अयोध्या के हिंदू मुसलमान एक दूसरे के शुभचिंतक हैं और एक दूसरे से उन्हें कोई खतरा नहीं है, लेकिन बाहरी लोगों का कोई भरोसा भी नहीं। इकबाल अंसारी और दूसरे मुसलमानों के इस डर पर खुद राज्य के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने संज्ञान लिया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ किया है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है।
सुरक्षा पूरी तरह वहाँ चौक चौबन्ना है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है और कोई भी असुरक्षित महसूस न करें और वहाँ पे जितनी भी पुलिस व्यवस्था होगी वहाँ हो रही है और हम लोग चैतन्य हैं, हम लोग सजग हैं इस बात के लिए और कोई ऐसी दृष्टि, कोई ऐसी चीज़ नहीं होने जा रही है जिससे कि हम लोग चिंतित हों। सब सामान्य कार्यक्रम होंगे जो कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के सहयोग से और उनके परमिशन से ही होगा।
हालांकि जानकारों का कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों के जुटने के बाद भी स्थिति वैसी नहीं है जैसी कि 1992 में थी। वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र त्रिपाठी कहते हैं तब तो मस्जिद थी जिसे ढहा दिया गया, लेकिन अब कितने भी लोग जुटे उनके लिए ऐसा कोई काम बचा ही नहीं है। बहरहाल पुलिस और प्रशासन ने आश्वासन भले ही दिया है, लेकिन जानकारों का ये भी कहना है कि दूध का जला छाछ भी संभल कर पीता है। समीर आत्मज मिश्र, PBC लखनऊ।
करीब 2 महीने पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव हुए थे जिसमें अध्यक्ष पद जीता था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के अंकित बसोया ने, लेकिन अब ABVP ने उन्हें अध्यक्ष पद छोड़ने को कहा है। मामला यह है कि अंकित बसोया पर फर्जी डिग्री के बल पर विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने का आरोप है। क्या ABVP को कोई समस्या दिख रही है? BBC संवाददाता कमलेश मठेनी ने ABVP की राष्ट्रीय मीडिया संयोजक मोनिका चौधरी से इस मामले में बात की।
हाईकोर्ट में भी मैटर गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास भी मैटर है और ABVP से ही दिल्ली यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट किया कि आप इसमें इंक्वायरी करके अंकित के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करने के बाद फेयर रिजल्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में लेकर आइए। तो कहीं ना कहीं जो दूसरों की इमेज है उस पर भी क्वेश्चन क्रिएट हो रहा था, लगातार ABVP की इमेज भी हैम्पर हो रही थी। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज ABVP ने ही एक्शन लिया कि अंकित बसोया को हमने सस्पेंड किया है जब तक कि इंक्वायरी पूरी तरह समाप्त होकर एक फेयर रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आ जाता।
क्या अंकित बसोया के लीडरशिप पर, उनके नेतृत्व पर कोई सवाल उठ रहा था?
नहीं, ऐसा नहीं था, बट जस्ट बिकॉज जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि जिस हर रोज एक नई र्यूमर आ रही थी उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए ही अंकित ने रेजिग्नेशन दिया।
NSUI ने आरोप लगाया था अंकित बसोया की डिग्री को लेकर, तब ABVP ने इसका समर्थन किया था कहते हुए कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही प्रक्रिया के तहत यूनिवर्सिटी ने देखे हैं और तब एडमिशन लिया है, लेकिन अभी ABVP को भी कहीं लगता है कि कहीं कोई समस्या है।
ऐसा नहीं है, एक्चुअली हुआ क्या है कि जिस टाइम पर ये इशू उठा था तो क्योंकि हमारे यहाँ भी काफी कैंडिडेट्स तैयारी करते हैं, तो एबीवीपी का जो अपना खुद का वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसमें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट का एडमिशन जेन्युइन है या नहीं ये हम वेरीफाई करते हैं। अंकित का एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिल्कुल एक जेन्युइन एडमिशन था, तो हमने कहीं से कहीं तक भी हमारा कोई डाउट उसकी डिग्री पे इन सब पर नहीं था। और आज भी ऐसा नहीं है कि कोई अंकित के उस पर हमारा डाउट क्रिएट हो गया है, लेकिन इस डायरेक्शन में कोई रिजल्ट आएगा तो ही चीजें कंक्लूड हो पाएंगी।
इस मामले में हमने अंकित बसोया से संपर्क करने की भी कोशिश की लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। और अब रुख मध्य प्रदेश का, जहां कांग्रेस पिछले 15 सालों से सियासी बनवास काट रही है। 28 नवंबर को होने वाले चुनाव में बाजी मारने के लिए कांग्रेस जी तोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन उसके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। कांग्रेस का कहना है कि वो इस चुनाव में पूरी तरह से एकजुट है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की समस्या केवल गुटबाजी है? सुनिए बीबीसी संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट जो उन्होंने भोपाल से आपके लिए भेजी है।
इतना ही काम थोड़े प्रत्याशी के पास है साहब, 10-8 दिन बचे तुम्हारे, क्या होगा?
कर सकते हैं सर, जब स्टार प्रचारक की गाड़ी ग्राम में यहां पे मिलती है,
40 में से 40 वो लोग नहीं आ रहे आप में सर, 2-4 नहीं आ रहे हैं।
भोपाल के कांग्रेस दफ्तर में बुंदेलखंड से आए प्रत्याशी अपने क्षेत्र में स्टार प्रचारकों की मांग राज्य के प्रभारी दीपक बावरिया से कर रहे हैं। दीपक बावरिया कई लोगों से घिरे हैं और सबकी बात बारी बारी से सुन रहे हैं। वो कई बार झल्ला जाते हैं और अपने समर्थकों से कहते हैं कि अभी केवल चुनाव प्रचार की बात करो। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पिछले 15 सालों से सियासी वनवास काट रही है। इस बार प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह भी काफी सक्रिय हैं। वो हर दिन कांग्रेस के बागियों को गाड़ी में बैठाकर दफ्तर लाते हैं और समझा बुझाकर मनाते हैं। कांग्रेस ने उन्हें इस चुनाव में समन्वयक की भूमिका दी है। कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पिछले 2 चुनावों की तुलना में ज्यादा एकजुट है। कांग्रेस नेता शोभा ओझा कहती हैं,
अगर हम यूनाइटेड खड़े रहते हैं तो वो सेटबैक को हम कवर कर जाते हैं, और अगर हम कहीं बिखराव रहता है हमारे संगठन में तो उसका नुकसान हमें होता है। 2003 के बाद फिर जो पिछला चुनाव हम लड़े, हम संगठित नहीं, हम कहीं ना कहीं बिखरे हुए थे।
कांग्रेस भले खुद को एकजुट बता रही है, लेकिन समस्या केवल यही नहीं है। मध्य प्रदेश में संगठन की कमजोरी, लंबे समय तक सत्ता के बाहर रहने के कारण आर्थिक तंगी और शिवराज सिंह चौहान जैसा कोई एक लोकप्रिय चेहरा का ना होना भी उसे परेशान कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस चुनाव जीतने का दावा किस आधार पर कर रही है? प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया कहते हैं,
देखिए जरूर से वो एक चुनौती तो है, मगर आज जो मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की बीजेपी की जो सरकार है और यहाँ की शिवराज सरकार है, उनका रूल इतना बुरा रहा है कि हर प्रजा का हर वर्ग उससे परेशान है। किसान परेशान है, कामदार परेशान है, महिलाएं परेशान है।
इस बार कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व को चुनौती देने के लिए वरिष्ठ नेता कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे किया है। हालांकि ये दोनों विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की पकड़ पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है और जिस दिग्विजय सिंह की पकड़ है उनकी छवि ठीक नहीं है। ऐसे में क्या कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर से ही उम्मीद लगाई बैठी है? वरिष्ठ पत्रकार विजयदत्त श्रीधर का मानना है कि चुनाव में कांटे की टक्कर है।
जो मध्य प्रदेश में चुनावी हालात जो हैं, इसमें परिस्थिति बहुत, एक तरह से ये कहना चाहिए कि बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है। 15 साल की सरकार के प्रति असंतोष और नाराजगियां ये बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में पहली तो राजनीतिक परिस्थिति यह है कि यहाँ द्विदलीय ध्रुवीकरण है, या तो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है।
बीजेपी लोगों से वोट मांगते हुए दिग्विजय सिंह के 10 सालों के शासन का हवाला देती है, वहीं कांग्रेस व्यापम और नर्मदा में अवैध खनन जैसे मुद्दों को उठा रही है। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और उसमें सरकारी परिसरों में आरएसएस की शाखा लगाने को प्रतिबंधित करने की बात कही है। बीजेपी ने कांग्रेस के इस वादे को हिंदू विरोधी होने की तरह पेश किया तो कांग्रेस ने इस पर चुप्पी साध ली। दीपक बावरिया का मानना है कि कांग्रेस इस मामले में अनायास धार्मिक गोलबंदी को हवा नहीं देना चाहती है। रजनीश कुमार, बीबीसी भोपाल।
और अब एक नजर दिल्ली से छपने वाले अखबारों पर। हमारी सहयोगी कमलेश अखबारों के साथ स्टूडियो में आ गई हैं। कमलेश, बताएं क्या क्या ऐसी खबरें हैं जो आज अखबारों के पहले पन्ने पर हैं?
जी हमारे सामने टाइम्स ऑफ इंडिया है, उसमें जो पहली खबर है उसमें दिया है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विचारक और आरबीआई के स्वतंत्र निदेशक एस गुरुमूर्ति ने आरबीआई की नीतियों की कड़ी आलोचना की है। आरबीआई की एक बैठक होने वाली है, अहम बैठक है, उससे पहले उनके बयान आए हैं। उन्होंने आरबीआई के आरक्षित भंडारण के नियमों पर भी उसके बदलावों की भी वकालत की है, साथ ही सरकार और आरबीआई के गतिरोध को भी अच्छी स्थिति नहीं बताया है। इसके अलावा एक खबर ये भी है, कुछ कई अखबारों में ये है कि गायक टीएम कृष्णा को दिल्ली में जो उनका कॉन्सर्ट होने वाला था जो रद्द हो गया था, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि वो यहाँ कॉन्सर्ट कर सकते हैं। बताया जा रहा था कि दक्षिणपंथी ट्रोलर्स के कारण कार्यक्रम रद्द हुआ था, हालांकि आयोजकों ने इसे मना किया है, ऐसा कारण होने से इनकार किया है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस में खबर है, सबरीमला मुद्दे से जुड़ी है, कि केरल में 3 घंटे तक सर्वदलीय बैठक हुई जो बेनतीजा रही। इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी इस बैठक से उठकर चले गए और कोई नतीजा नहीं निकला है।
जी एक खबर मैं जनसत्ता से बता दूं, अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक बच्चे की मौत हो गई थी जिसे बंदर ने काट लिया था। अब उत्तर प्रदेश में एक महिला की भी मौत हो गई है, 58 साल की इस महिला की मौत बंदर के हमले के कारण हुई है। और इसी पर अखबार ने इरफान का कार्टून छापा है, ऊपर लिखा है बंदर तंत्र, बंदरों के हमले से आगरा में 2 दिनों में 2 जाने गई।
इसी को लेकर सरकार ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं बंदरों से कैसे निपटा जाए। और हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठा आरक्षण के संकेत दिए हैं। उन्होंने अहमदनगर की एक रैली में बोला कि मराठा आरक्षण पर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट हमें मिल गई है, अब मैं आपसे कहूंगा कि आप आंदोलन नहीं जश्न की तैयारी कीजिए। उन्होंने 1 दिसंबर को जश्न की बात कही है।
जी
और हिंदुस्तान अखबार में एक खबर है जिसके मुताबिक दिल्ली के वसंत कुंज में एक फैशन डिजाइनर माला लखानी उनके नौकर की हत्या कर दी गई, जिसमें उनका दर्जी ही शामिल है जो बुटीक में काम करते
हैं। इसमें जिन्होंने हत्या की है उन्होंने पुलिस के सामने समर्पण भी किया है, ऐसी खबरें भी आई
कई अखबारों ने ये खबर
जी। अखबारों की विस्तृत समीक्षा के लिए शुक्रिया कमलेश। और अब आगे चलते हैं खेल की खबरें। आईसीसी महिला विश्व T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम ने गुरुवार को लगातार तीसरी जीत हासिल करते हुए आयरलैंड को 52 रनों से हरा दिया और सेमीफाइनल के लिए अपना रास्ता साफ कर लिया। 2009 और 10 के बाद अब जाकर भारतीय टीम तीसरी बार इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची है। सुनिए हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त की रिपोर्ट।
वेस्ट इंडीज में जारी आईसीसी महिला विश्व 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम जीत के रथ पर सवार है। कल उसने लगातार तीसरी जीत हासिल करते हुए आयरलैंड को 52 रन से मात दी। इसके साथ ही भारतीय टीम सेमीफाइनल में भी पहुंच गई है। आयरलैंड के सामने जीत के लिए 146 रनों का लक्ष्य था, लेकिन वो पूरे 20 ओवर खेलकर 8 विकेट खोकर 93 रन ही बना सकी। आयरलैंड की इसाबेल जॉय से 38 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 33 और सलामी बल्लेबाज क्लेयर शिलिंगटन 23 रन बनाकर कुछ संघर्ष कर सकी, बाकी बल्लेबाज तो बस मैदान पर आई और गई। भारत की राधा यादव ने 25 रन देकर 3 और दीप्ति शर्मा ने 15 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इससे पहले आयरलैंड की कप्तान लॉरा डेलनी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 145 रन बनाए। भारत की सलामी जोड़ी मिताली राज और स्मृति मंधाना ने पहले विकेट के लिए 67 रन जोड़कर भारत को शानदार शुरुआत दी। मिताली राज ने इस टूर्नामेंट में अपना लगातार दूसरा अर्धशतक जमाते हुए 51 रन बनाए। उन्होंने इस दौरान 56 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके और 1 छक्का लगाया। उनकी जोड़ीदार स्मृति मंधाना ने 29 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से तेज तर्रार 33 रन बनाए। आयरलैंड की किम गार्थ ने 22 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। भारतीय टीम की जीत के बाद शानदार फॉर्म में चल रही मिताली राज ने कहा कि इस टूर्नामेंट में पहले ही मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत से सभी खिलाड़ी बेहद उत्साहित हैं।
The way we started off has been incredible and I definitely want this team to play the finals.
अब भारत अपना आखिरी पूल बी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से कल खेलेगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम भी इससे पहले लगातार 3 मैच जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है।
रिपोर्ट सुना रहे थे आदेश कुमार गुप्त। और अब कार्यक्रम में आपसे विदा लें, उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर कमलेश मठेनी से।
कैबिनेट से मंजूर हुए ब्रेक्जिट मसौदे के विरोध में प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने इस्तीफे टेरेसा मे से इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन टेरेसा मे ने अपने इस्तीफे से जुड़ी अटकलों को खारिज कर दिया है। बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमानों को वापस म्यांमार भेजने की योजना पर रोक लगाने के बाद म्यांमार अधिकारियों ने अपने बांग्लादेशी समकक्षों की आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि पूर्वी कांगो में बेनी शहर के पास हुई एक मुठभेड़ में उसके 7 शांति सैनिकों की जान चली गई है। मध्य अमरीकी देशों के लोगों का काफिला मैक्सिको अमरीका की सीमा पर स्थित शहर तेजुआना पहुंच गया है। ये लोग सीमा पर अमरीका जाना चाहते हैं। अमरीका ने सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खाशोजी की हत्या में शामिल होने के आरोप में सऊदी अरब के 7 नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। अगला प्रसारण दिन भर शाम के 7:30 बजे। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।